आप सबने प्रसाद लिया है, थोड़ा देर से लिया होगा। ये छोटा शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे इतनी सुविधाएं भी नहीं हैं। हो सकता है आप सबको थोड़ी बहुत असुविधा हुई हो आते समय, और यहाँ पे रहने के लिए भी थोड़ी बहुत असुविधा हुई होगी। तो ये तो तीर्थ यात्रा है, तीर्थ यात्रा में कभी कभी ऐसे असुविधा हो जाती है, विशेष करके जब एक साथ में कई भक्त आते हैं। इसलिए ऐसे तपस्या को तीर्थ यात्रा का एक उद्देश्य समझकर ही आप आइए, या ये समझकर कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, आचार्यों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कोई तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत न केवल धन से है, क्योंकि हम पैसे खर्च करते हैं आने के लिए, लेकिन साथ साथ जो भी कुछ शारीरिक कष्ट होता है तो इनको भी हमें इसी भाव से सहन कर लेना चाहिए। हमें ये याद रखना है कि पहले पुराने काल में कोई सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। लोग जहाँ भी जाते थे उनके लिए न कोई गाड़ियाँ थी, न कोई रहने के लिए बड़ी सुविधाएं थीं, वो बस पैदल जाते थे। और जहाँ रहने के लिए स्थान मिला, कभी कोई पेड़ के नीचे, कभी कुछ, तो रह जाते थे। तो साधारण आदमियों के लिए और जो धनी व्यक्ति थे उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था थी, कभी जाके कोई आश्रम में रहे, कभी धर्मशाला में रहे, कोई मंदिर में रहे, और कभी कभी तो ऐसे पेड़ों के नीचे रह जाते थे। तो ये हमारी प्रथा है, तीर्थ यात्रा में जाना है ऐसा जाना है। फिर भी तीर्थ यात्रा में जाने के लिए, क्योंकि आजकल सबके पास समय कम है, कलयुग का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो इन सुविधाओं का प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो हम कर सकते हैं। परंतु इतना देखना है कि हम इस भाव को बनाए रखें। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन जय राधा माधव।
माधव पूज्य बिहारी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय रथ माधव पूज्य बिहारी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन जारी यमुना तीरावन जारी जय रथ माधव पूज्य बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
Jai Radha Gopala Nanda Radha
विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री मेलकोटे तीर्थ क्षेत्र की जय। श्री तिरुनारायण क्षेत्र की जय। श्री तिरुनारायण मंदिर की जय। श्री चलुव नारायण मंदिर की जय। श्री योग नरसिंह क्षेत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्नितिनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे भूमि में रहते हैं जहाँ कितने सारे तीर्थ स्थान हैं, भगवान के धाम हैं। न केवल जहाँ भगवान प्रकट हुए हैं अपने अर्चक विग्रह के रूप में हो या अपने प्रकट लीला भगवान ने प्रदर्शित की है या फिर उनके शुद्ध भक्त भी अनेक लीलाएं कर चुके हैं, इसलिए तो इस देश को भारतवर्ष को पुण्य भूमि कहते हैं। कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि क्या भगवान केवल भारत में ही प्रकट हुए थे, वो अन्य देशों में क्यों नहीं प्रकट हुए। इसका उत्तर ये है कि भगवान केवल भारत में प्रकट नहीं हुए, सारे पृथ्वी में हुए हैं, बल्कि सारे ब्रह्मांड में हुए हैं, बल्कि जितने भी ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, उन सब में प्रकट हुए हैं। फिर भी ये भारतवर्ष की विशेषता है, क्योंकि ये पुण्य भूमि है, इसलिए यहाँ पर भगवान और उनके शुद्ध भक्त अधिक प्रकट हुए हैं। जितने भी नदियाँ यहाँ पर हैं, वो पवित्र मानी जाती हैं। इनमें से कई नदियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं, परंतु सभी पवित्र हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधो कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। जब हम पानी का शुद्धिकरण करते हैं भगवान की सेवा के लिए, आचमन के लिए आदि, तो हम सारे पवित्र नदियों का आह्वान करते हैं, उनसे निमंत्रण करते हैं कि हे गंगे, हे यमुने, हे गोदावरी इत्यादि, कृपया यहाँ आप इस जल में प्रकट हो जाइए। और ऐसे जल को पवित्र करके फिर हम इसका प्रयोग करते हैं हमारे किसी उद्देश्य के लिए। उसी प्रकार यहाँ कितने सारे पर्वत हैं, वो भी सब इतने पावन माने जाते हैं। हिमालय है, विंध्या है, सह्याद्री है, शेषाद्री है, और यहाँ पे नारायणाद्री है। ऐसे कितने सारे पर्वत हैं जो भी शुद्ध माने गए हैं, बहुत ही पावन माने गए हैं। उसी प्रकार से अन्य कितने और तीर्थ क्षेत्र और धाम हैं। और ऐसे बताया जाता है कि हमें ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में जाकर अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए और भगवान और उनके भक्तों की वाणी हमें सुननी चाहिए, उनके उपदेश, उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और ये तीर्थ यात्रा के क्या उद्देश्य होते हैं, जैसे पहले हम कह चुके थे कि भगवान की प्राप्ति के लिए थोड़ा कष्ट हमें उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। ये दुनिया में किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए कष्ट के बिना नहीं हो पाता है। यदि हम कोई भौतिक कार्य भी करना चाहते हैं तो कष्ट के बिना नहीं हो पाएगा। तो जब संसार के उद्देश्यों के लिए हम कष्ट उठाने के लिए तैयार होते हैं, तो हमारे शाश्वत लाभ के लिए, हमारे श्रेयस के लिए, दिव्य प्राप्ति के लिए क्यों ना हम कोई तपस्या करें। तपस्या का क्या मतलब होता है? तपस्या का मतलब होता है कोई अपनी इच्छा से कोई अपने ऊपर मानसिक या शारीरिक कष्ट स्वीकार करना, भगवान की प्राप्ति के लिए या किसी ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो जब हम भगवान के लिए ऐसी तपस्या करते हैं तो इसे दिव्य तपस्या कहते हैं। हाँ, शुरुआत में थोड़ा कष्ट तो होता है, परंतु अंत में दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। जैसा कि ऋषभदेव महाराज श्रीमद्भागवत में कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्व शुद्ध ये ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो हमें तपो दिव्यम करना है, भगवान के लिए तपस्या करनी है, इसलिए ऐसे तीर्थ स्थान भगवान ने कृपा करके हम सब के लिए दिए हैं। अन्यथा भगवान को प्रकट होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने ये सुंदर व्यवस्था की है। तो जिस क्षेत्र में हम आज बैठे हैं, मेलकोटे क्षेत्र, ये भी एक ऐसा ही पावन क्षेत्र है। बहुत प्राचीन है ये क्षेत्र। ऐसे कई पुराण हैं, जैसे कि नारदी पुराण है और मत्स्य पुराण है, जिसमें कि इस क्षेत्र का वर्णन है। और इन पुराणों में यादवाद्री या यादवगिरी महात्म्य है, जिसमें विस्तार में बताया गया है कि यहाँ कौन सी लीलाएं हुई थीं और इसका महात्म्य क्या है। हर एक तीर्थ स्थान या धाम के साथ साथ कोई महात्म्य का वर्णन होता है, पुराणों में पाया जाता है। तो ये पौराणिक कथाएं सत्य हैं और इनको सुन के हम समझ सकते हैं कि ये स्थान कितना महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। ऐसे इस यादवगिरी महात्म्य में, जो कि मत्स्य पुराण और नारदी पुराण में है, इसमें बताया जाता है कि ये स्थान सत्य युग में नारायणाद्री के नाम से जाना जाता था। अद्री मतलब पर्वत, ये तो पर्वत है, पर्वत के नीचे फिर हम यह आए हैं। तो नारायण आद्री इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये विग्रह का संबंध बद्रिक आश्रम के बद्री नारायण से है, बल्कि ये तिरु नारायण मंदिर के सामने जो मुख्य मंदिर है उसके सामने बद्री नारायण जी का मंदिर है और उस मंदिर के सामने बद्री वृक्ष है। आप तो जानते हैं कि उत्तर भारत में हिमालय में बद्रिक आश्रम है या बद्रीनाथ, तो उसमें बद्री विशाल जी या भगवान श्री नारायण विराजमान हैं। वहाँ नर नारायण ऋषियों ने तपस्या की थी, तो वहाँ के नारायण ऋषि ने भी विराजमान होके वहाँ ज्ञान दिया था, कृपा दी थी भगवान को, भक्तों को। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी वही भगवान नारायण विराजमान हैं, इसलिए इस क्षेत्र को दक्षिण बद्रीनाथ भी कहते हैं। तो आप में से जो भक्त बद्रीनाथ नहीं जा पाए हैं आज तक, तो कोई बात नहीं, आप दक्षिण बद्रीनाथ में आए हैं तो आपको भी वही लाभ मिलेगा उत्तर भारत के बद्रीनाथ में जाने का। तो यहाँ इस बद्रीनाथ में, दक्षिण बद्रीनाथ में भगवान नारायण विराजमान हैं जिनको तिरु नारायण कहते हैं। तो ये नारायण आद्री है या तिरु नारायण आद्री है, और उसको चलुव तिरु नारायण पर्वत भी कहते हैं या चलुव तिरु नारायण मंदिर भी कहते हैं। ये चलुव कहाँ से आया इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। फिर आगे चल के त्रेता युग में इस स्थान का नाम हुआ वेदाद्री तीर्थ। वेदाद्री तीर्थ इसलिए नाम आया कि भगवान कृष्ण के अवतार दत्तात्रेय, इनका नाम आपने सुना होगा, इनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में है। तो यहाँ पर दत्तात्रेय ने वेदों का ज्ञान अपने अनेक शिष्यों को दिया था। यहाँ ऐसे बताया जाता है कि प्रह्लाद भी ज्ञान प्राप्त करने आए थे दत्तात्रेय से, मेधातिथि इत्यादि अनेक ऐसे शिष्य थे दत्तात्रेय के। इसलिए त्रेता युग में इस स्थान का नाम था वेदाद्री। फिर द्वापर युग में इस स्थान का नाम हुआ यादवाद्री या यदुगिरी, गिरी भी पर्वत है। तो यहाँ यादवों ने, कृष्ण के वंश के लोगों ने आके यहाँ उपासना की थी भगवान श्री नारायण की, इसलिए त्रेता युग में इस क्षेत्र का नाम हुआ यादवाद्री या यदुगिरी। और फिर कलयुग में ये जाना जाता है यति शैल के नाम से, शैल भी पर्वत है। जैसे शैलजा पार्वती का नाम है, शैलजा जो पर्वत से हिमालय से जिन्होंने जन्म लिया, तो शैल मतलब पर्वत, शील से आता है पत्थर, तो शैल। और यति मतलब सन्यासी, तो कौन से सन्यासी, रामानुजाचार्य। तो ये स्थान रामानुजाचार्य से संबंधित है, बल्कि रामानुजाचार्य का इतना घनिष्ठ संबंध है इस स्थान से कि वो इस स्थान के राजा माने जाते हैं। यद्यपि वो सन्यासी थे, लेकिन ऐसे रामानुजा का नाम भी है यतिराज, सन्यासियों में से राजा। जब रामानुजाचार्य यहाँ पर आए थे, और इसकी चर्चा हम शाम को और कल परसों भी करेंगे बहुत विस्तार में, तो यहाँ पे केवल जंगल था, कुछ नहीं था यहाँ पर, लेकिन रामानुजाचार्य के आने के बाद यहाँ मंदिरों की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा भगवान के विग्रहों की हुई, यहाँ भक्त तो अनेक संख्या में आके बस गए, और यहाँ पे एक शहर का निर्माण हो गया जहाँ एक जंगल था, यहाँ कुछ भी नहीं था यहाँ पर। इसलिए श्री रामानुजाचार्य के पीछे इस स्थान का नाम रखा गया यति शैल। यहाँ पे श्री वैष्णवों का विशेष हृदय है, श्री वैष्णव पंथ में वो लोग कई तीर्थ स्थानों को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके पंथ में 108 दिव्य देशम हैं जो भगवान श्री कृष्ण या नारायण या श्री राम से संबंधित हैं, जो महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं या महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र हैं उनके लिए 108 प्रमुख हैं। वैसे तो तीर्थ यात्रा क्षेत्रों की कोई संख्या नहीं है, कोई गिन नहीं सकता, परंतु इनमें से उन्होंने 108 महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र चुन लिए हैं। और इन 108 तीर्थ क्षेत्रों में से श्री वैष्णवों के लिए 4 स्थान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक है श्रीरंगम दक्षिण भारत में तमिलनाडु में, दूसरा है कांचीपुरम भी दक्षिण भारत में तमिलनाडु के देश में है। कांचीपुरम का नाम भी आपने सुना है, ये भी भगवान से बहुत रामानुजाचार्य से और उनके भक्तों से बहुत संबंधित है। तीसरा है तिरुपति का नाम भी आप सबने सुना है, आप में से शायद गए भी होंगे सभी। और चौथा है ये मेलकोटे धाम। तो ये 4 स्थान जो हैं ये भक्तों के लिए, श्री वैष्णव भक्तों के लिए विशेष करके बहुत महत्वपूर्ण हैं। रंगनाथ जी विराजमान हैं श्री रंगम में। रंगनाथ जी भी भगवान नारायण के रूप हैं, वो वहाँ शयन कर रहे हैं। और इसके पीछे भी एक इतिहास है जो यहाँ नहीं सुनेंगे, वो आगे चल के श्री रंगम की यात्रा जब होगी तब वहाँ पे विस्तार में सुनेंगे। लेकिन संक्षेप में यहाँ थोड़ी देर बाद भी हम कहेंगे। फिर तिरुपति में तो वेंकटेश्वर हैं, बालाजी हैं, और फिर आगे चल के कांचीपुरम में वरदराज जी हैं जो वरदान देने वालों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। वरदराज, द मतलब जो दान करते हैं, प्रदान करते हैं। तो कांचीपुरम में विराजमान हैं वरदराज, और यहाँ पे मेलकोटे में विराजमान हैं तिरुनारायण या चलुव तिरुनारायण। तो यहाँ के प्रमुख ये विग्रह है। वैसे श्री वैष्णव ग्रंथों में ऐसे भी बताया जाता है कि श्रीरंगम भोग मंडप है। भोग मंडप मतलब दिव्य आनंद का स्थान है भगवान के लिए। और तिरुपति है पुष्प मंडप मतलब वहाँ पुष्पों का स्थान है, पुष्पों से खूब भगवान की सेवा भी की जाती है। और फिर कांचीपुरम है तप मंडप या वैराग्य मंडप, और यहाँ मेलकोटे है ज्ञान मंडप, क्योंकि यहाँ पे अनेक ऋषि जैसे नारद जी, शांडिल्य, भृगु इत्यादि आए थे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण स्थान इसके लिए भी माना जाता है। और इन 4 स्थानों के विशेषताएं भी हैं, जैसे श्रीरंगे में भगवान की चाल जो होती है वो बहुत प्रसिद्ध है, और तिरुपति में भगवान का प्रसाद, कांचीपुर में भगवान का छत्र, और यहाँ पे मेलकोटे में भगवान का मुकुट। इसके पीछे भी इतिहास जो है थोड़ी देर में ही हम सुनेंगे। तो ये 4 स्थानों में से एक महत्वपूर्ण स्थान है श्री वैष्णवों के लिए। और बल्कि यहाँ रामानुजाचार्य 12 वर्षों तक रहे थे, जबकि उनको श्रीरंगम छोड़ना पड़ा था। किस कारण से छोड़ना पड़ा वो आज शाम को या कल हम सुनेंगे। तो यहाँ पे आके उन्होंने यहाँ मंदिरों की स्थापना की और प्राण प्रतिष्ठा विग्रहों की और यहाँ रह के खूब प्रचार किया उन्होंने। इसलिए मेलकोटे क्षेत्र भी श्रीरंगम के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका प्राचीन इतिहास इस प्रकार से है कि रामानुजाचार्य के पहले से भी ये तीर्थ स्थान था। हमने पहले कहा था कि पुराणों में वर्णन है इन क्षेत्रों का, तो रामानुजाचार्य ने आके इस स्थान की पुनः स्थापना की। ऐसा नहीं है कि रामानुज ने आके शुरुआत की, यहाँ पे पुनः स्थापना हुआ। ऐसे बताया जाता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी वो चाह रहे थे कि वो भगवान की सेवा करें, उनकी निजी भजन के लिए, उनकी निजी उपासना के लिए वो भगवान की एक मूर्ति चाहते थे सेवा करने के लिए। तो भगवान ने उनको एक मूर्ति भेज दी अपनी, एक विमान आया, एक विमान के ऊपर भगवान श्री विष्णु या नारायण की मूर्ति प्रकट हुई, और ये मूर्ति थी तिरुनारायणमन मूर्ति भगवान की। तो बड़े आनंद से ब्रह्मा जी ने तिरुनारायण की उपासना करना शुरू कर दिया, परंतु उनके पुत्र थे चतुष्कुमार, उनमें से एक थे सनत कुमार। तो सनत कुमार की इच्छा हुई कि मैं इस मूर्ति की सेवा भी करना चाहता हूँ, तो ब्रह्मा जी ने तिरुनारायण की मूर्ति सनत कुमार को दे दी। और ब्रह्मा जी फिर सोच रहे थे कि मेरी मूर्ति तो मैंने नारायण की मूर्ति तो दे दी सनत कुमार को, मेरे पुत्र को, लेकिन अब मेरे पास कोई मूर्ति रही नहीं, मैं सेवा करना चाहता हूँ अभी भी। उस समय फिर तिरुनारायण मूर्ति के हृदय से एक और मूर्ति निर्माण हुई, प्रकट हो गई। वो मूर्ति है चेलुव नारायण मूर्ति। और फिर ब्रह्मा जी ने बड़े आनंद से चेलुव नारायण की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। उधर सनत कुमार को जो तिरुनारायण मूर्ति मिली थी भगवान की, वो कैलाश पर्वत आदि पार करके यहाँ इस क्षेत्र में आए, और उन्होंने तिरुनारायण की स्थापना यहाँ पर इस क्षेत्र में की। जो दो यहाँ के मूल विग्रह हैं वो तिरुनारायण विग्रह हैं। तरह तरह के विग्रह होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। एक है मूल विग्रह, जिनकी एक बार प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो उनको हिलाया नहीं जा सकता, और वो अक्सर बड़ी मूर्तियाँ होती हैं। और एक प्रकार की मूर्ति होती है जिसको उत्सव मूर्ति या विजय मूर्ति कहते हैं, वो छोटे होते हैं, और इनका उद्देश्य होता है कि उत्सव के समय ये पालकी में बाहर ले जाए जाते हैं सैर करने के लिए, परिक्रमा में जाते हैं और सभी लोग उनका दर्शन करते हैं, खूब कीर्तन करते करते, संगीत के वाद्य बजाते बजाते भक्त लोग जाते हैं, और फिर सारे गांव के लोग बाहर आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो यह है उत्सव मूर्ति या विजय विग्रह। तो ये जो चेलुव नारायण मूर्ति हैं यहाँ पे, ये उत्सव मूर्ति हैं तिरुनारायण के। तो जो बड़े मूर्ति अभी आपने दर्शन किया है आज थोड़ी देर पहले, जो सबसे पहले आपने दर्शन किया होगा बड़े मूर्ति है, वो है तिरुनारायण मूल मूर्ति। और आपने पास में देखा होगा दूसरा गर्भगृह था, वो है चेलुव नारायण मूर्ति, जो भूदेवी और श्रीदेवी के साथ में है, और उनका नाम संपत कुमार या सेल्व पिल्लई या राम प्रिया भी है। इनके पीछे भी हम लीलाएं क्या हैं वो आगे चल के देखेंगे। तो ये उत्सव मूर्ति है, विजय विग्रह, और इनको बाहर ले जाया जाता है परिक्रमा के लिए, सैर के लिए, शोभा यात्रा के लिए। तो खैर, ये मूल जो मूर्ति है तिरुनारायण की, वो सनत कुमार ने स्वयं लाके यहाँ पे स्थापित कर दिया। और जिस समय यहाँ पर रामानुजाचार्य आए थे करीब करीब 1000 वर्ष पूर्व, उस समय केवल उनको तिरुनारायण की मूर्ति मिल गई, जो कि पहाड़ में थी कहीं, पर इसकी लीला भी हम बाद में सुनेंगे। परंतु उनके पास कोई उत्सव मूर्ति नहीं थी, फिर उत्सव मूर्ति भी प्रकट हो गई चेलुवा नारायण की, इसकी कथा भी आप शाम को सुनेंगे या कल सुनेंगे। तो खैर चेलुवा नारायण मूर्ति कैसे आई यहाँ पर, इसकी कहानी बहुत सुंदर है। जब ब्रह्मा जी के पास चेलुवा नारायण मूर्ति आ गई तिरु नारायण के हृदय से, क्योंकि उन्होंने तिरु नारायण की मूर्ति तो सनत कुमार या उनके पुत्र को दे दी थी, तो सेवा करते करते त्रेता युग आ गया। इस कल्प में, ब्रह्मा जी के इस दिन में कल त्रेता युग आ गया। और फिर त्रेता युग के समय आप जानते हैं श्री राम प्रकट हुए, उन्होंने वनवास में जाके फिर रावण की हत्या कर दी और फिर वापस चले आए। जब उनको विजय प्राप्त हो गया तो उन्होंने उनके पास जो भी कुछ था वो सब दान में दे दिया अपने भक्तों को। अयोध्या की का ऐश्वर्य तो असीमित है, फिर भी उन्होंने सब कुछ दे दिया और उन्होंने राम राज्य की स्थापना कर दी। उनके घर में वास्तव में ये मूर्ति थी छोटी सी, वैसे उनके पूर्वजों से वो चलती आई थी, दशरथ महाराज और उनके आगे भी चल के उनके जो वंशज हैं यहाँ से, कि महाराज इक्ष्वाकु, ये सब इस मूर्ति की पूजा करते थे। और इस मूर्ति को फिर श्री राम ने विभीषण को भेंट में दे दिया, क्योंकि विभीषण अब लंका के राजा बने थे। रावण के भाई होने के बावजूद वो वास्तव में वैष्णव थे, वो श्री राम के भक्त थे, रावण को छोड़कर राम के शरण को ग्रहण करने आए थे। श्री वैष्णव संप्रदाय में तीन चीज़ें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, एक है अष्टाक्षर मंत्र, दूसरा है द्वय मंत्र, इन दोनों की चर्चा हम नहीं करेंगे, और तीसरा है चरम श्लोक। चरम मतलब सबसे ऊंचा श्लोक, तो चरम श्लोक दो प्रकार के उनके हैं या तीन प्रकार के वास्तव में। एक चरम श्लोक है भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन समस्त धर्मों को त्यागो और मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। श्री वैष्णव संप्रदाय में इस श्लोक को इतना महत्वपूर्ण बताया जाता है कि रामानुजाचार्य उनके एक शिक्षा गुरु गोष्ठीपूर्ण के पास 18 बार गए, 17 बार मना कर दिया उन्होंने, 18वां बार उनको इस श्लोक का गुह्य तात्पर्य बताया। और फिर रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे जैसे दाशरथी इत्यादि, वो भी बहुत तीव्रता से जानना चाहते थे ये सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक का अर्थ क्या है। फिर अंत में जाके रामानुजाचार्य में उनको भी समझाया विस्तार में। तो हमें भी जान लेना चाहिए कि हम जब गीता पढ़ते हैं हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये श्लोक तो हम पहले सीख चुके हैं, हमारे लिए बहुत सरल है, परंतु इसका तात्पर्य बहुत गहरा है। इसलिए श्री वैष्णव संप्रदाय के भक्त इस श्लोक को चरम श्लोक कहते हैं। और साथ साथ में और एक श्लोक है जिसको वो चरम श्लोक मानते हैं, और वो है वो श्लोक जो कि श्री राम ने कहा था जब विभीषण को लंका से बहिष्कृत कर दिया गया था और वो समुद्र पार करके वानर सेना के पास आ गए जो समुद्र तट पे खड़े थे। तो वानर सेना ने अनेकों ने संशय की दृष्टि से देखा विभीषण की ओर, किसी ने कहा ये जासूस बन के आए हैं, ये हमारा शत्रु है, कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कोई रावण की चाल है, ऐसे अनेकों ने अपने अपने मत प्रकट किए प्रस्तुत किए। जब ये बात श्री राम के पास आई तो राम ने विभीषण का भाव देखा और राम ने एक महत्वपूर्ण बात कही, सकृत एव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम ये तत्व्रतम ममा। उन्होंने कहा कि सुनो, यदि एक भी बार सकृत एव, यदि एक बार भी कोई मेरे पास आता है ये याचना करके तव अस्मि कि मैं आपका हूँ, तो मैं ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करता हूँ और उसे निर्भयता प्रदान कर देता हूँ। अभयम सर्वदा तस्मै ददामि, हमेशा के लिए वो व्यक्ति निर्भय रहेगा। और ये मेरा व्रत है, मेरा वचन है, व्रतम मम। तो ये भी एक शरणागति का श्लोक है। तो श्री वैष्णव संप्रदाय में शरणागति ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको प्रपन्न कहते हैं। इसलिए प्रपन्नामृत ये बहुत महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है रामानुजाचार्य के बारे में। और एक भी श्लोक है, चरम श्लोक, जो वराहदेव कहते हैं। तो खैर, बात ये है कि विभीषण का स्थान भी श्री वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है श्री राम की लीला में। तो श्री रामचंद्र ने देखा कि मैं विभीषण को क्या भेंट दे सकता हूँ, तो विभीषण को उन्होंने ये मूर्ति प्रदान कर दी, जो अनेक पीढ़ियों से सूर्यवंश में, इक्ष्वाकु के वंश में पूजा जा रहा था। सूर्यवंश के क्षत्रिय राजा इस विग्रह की सेवा करते थे स्वयं। तो श्री राम ने ये दे दी और विभीषण इस मूर्ति को उठाकर ले जा रहे थे लंका, कि लंका जाते जाते अचानक मूर्ति बहुत भारी हो गई और विभीषण को इस मूर्ति को नीचे रखना पड़ा जमीन पर। और जैसे ही वो फिर से उठाकर ले जाना चाहते थे तो मूर्ति उठी नहीं और मूर्ति वही रही। फिर विभीषण ने ये समझा कि भगवान की इच्छा थी कि वो यहाँ पर रहें और यहीं पर उनकी सेवा हो। और वो स्थान है श्रीरंगम, कावेरी नदी के तट पे, और वो मूर्ति अब रंगनाथ के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अपने प्रिय भक्त विभीषण को सांत्वना देने के लिए वो अभी दक्षिण की ओर अपना मुख कर रहे हैं। वैसे वैदिक पद्धति शिल्प शास्त्र के अनुसार जब मंदिरों की स्थापना की जाती है तो मूर्ति का मुख जो है वो पूर्व की तरह होना चाहिए, परंतु श्रीरंगम में हम देखते हैं कि पश्चिम, ये दक्षिण की ओर है, क्योंकि रंगनाथ जी अपने प्रिय भक्त विभीषण जो कि लंका में हैं उनकी ओर देख रहे हैं। तो खैर, अब श्री राम की जो पूजनीय विग्रह हैं वो तो उन्होंने दे दी विभीषण को, अब उनके पास कोई मूर्ति नहीं थी सेवा करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे देना चाहिए मेरी मूर्ति। पहली बार तो मेरी मूर्ति मैंने सनत कुमार को दे दी, अब उस मूर्ति के हृदय से ये मूर्ति मिल गई, चेलुव नारायण की मूर्ति। अब मैं देख रहा हूँ कि श्री राम ने भी अपनी मूर्ति दे दी, तो मुझे ये मूर्ति उनको देनी चाहिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने ये चेलुव नारायण की मूर्ति, जो उत्सव मूर्ति आज है यहाँ, वो श्री राम को उन्होंने भेंट कर दी। राम ने बड़े आनंद से इनकी सेवा की, चेलुव नारायण की। और उनके बाद उन्होंने अपने पुत्र कुश को भेंट दे दी कि तुम सेवा करना चेलुव नारायण की। कुश की एक पुत्री थी जिसका नाम था कनक मालिनी। कनक मालिनी का विवाह हुआ यदु शेखर से, जो कि श्री कृष्ण के वंशज थे। आप तो जानते हैं कि श्री राम सूर्य वंश में आए और श्री कृष्ण या यदु वंश, ये चंद्र वंश में आया। तो पहले तो ये मूर्ति सूर्य वंश में पूजी जा रही थी, लेकिन अब कुश की पुत्री का विवाह एक यदुवंशी से हुआ। तो कनक मालिनी बहुत सेवा करती थी, आसक्त थी चेलुव नारायण की मूर्ति से। तो उन्होंने पिता से प्रार्थना की कि जाते जाते मैं ये भी ले जाना चाहती हूँ, इनको ले जाना चाहती हूँ मेरे साथ में। तो श्री कुश ने उनको अनुमति दे दी और इस प्रकार से चेलुव नारायण की मूर्ति जो है वो आ गई यदुवंश में। द्वारका में आकर यदुवंशी इनकी पूजा कर रहे थे। तो वहाँ एक दिन जब ऐसी पूजा चल रही थी, बलराम जी तीर्थ यात्रा में निकले हुए थे, तो वहां निकले हुए यहां पर पहुंचे यादवाद्री में, तो उन्होंने आके यहां तिरुनारायण का दर्शन किया। और जैसे ही दर्शन किया उन्होंने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल हमारे चलुव नारायण की तरह दिखते हैं। तो वापस गए तो श्री कृष्ण से उन्होंने बात की कि मैं वहां गया था यादवाद्री में मेलकोटे धाम में, और वहां तो तिरुनारायण मूर्ति है भगवान की, हमारे नारायण मूर्ति के बिल्कुल समान है, ये तो छोटे हैं वो बड़े हैं। तो उन्होंने जान लिया कि ये उत्सव मूर्ति है। फिर वो ले आए कृष्ण और बलराम, और फिर यहाँ इनकी स्थापना हुई चेलुव नारायण की। तो इस तरह से चेलुव नारायण जी की मूर्ति यहाँ पर आ गई। तो दोनों तिरुनारायण और चेलुव नारायण यहाँ मिल गए। अब इसके बाद की भी कथा है कि यहाँ पे जब मुसलमानों ने आक्रमण किया था, मोहम्मद घजनी यहाँ तक पहुँच गया था आक्रमण करते करते मंदिरों को तोड़ना और लूटना, ये सब मोहम्मद घजनी का काम था। तो मोहम्मद घजनी भी यहाँ पे आए, और यह आकर जैसे उसकी आदत थी कि विग्रहों को लूट लेना, उनके जो गहने आदि हैं वो भी ले लेना, आभूषण आदि। तो ये जो चेलुव नारायण की मूर्ति है वो तो मोहम्मद घजनी के सैनिक ले गए वापस उत्तर की ओर। और यहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने ये मूर्तियाँ जो मूर्ति को छुपा के रखा था पर्वत में। तो ये इतिहास है। और इसके बाद फिर रामानुज की लीला शुरू होती है कि रामानुज ने कैसे पुनः तिरुनारायण मंदिर मूर्ति को ढूंढकर स्थापना कर दी यहाँ, और फिर से दिल्ली जाकर वो चेलुव नारायण की मूर्ति लेकर आए, फिर दोनों यहाँ एक हुए। लेकिन रामानुजाचार्य के बारे में हम बाद में सुनेंगे, लेकिन मूल रूप से यहाँ तिरुनारायण और चेलुव नारायण कैसे आए ये एक पौराणिक कथा है जो यादवगिरी महात्म्य में बताया गया है। अब ये पूछा जा सकता है कि यह मेलकोटे धाम में भगवान का मुकुट महत्वपूर्ण माना जाता है तो ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। वैसे प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन। विरोचन जब वो वैकुंठ गया था तो उसने देखा कि भगवान थोड़ी योग निद्रा में हैं, तो उन्होंने उनका मुकुट चोरी कर लिया और चोरी करके यहाँ पर चले आए। और वैसे वास्तव में वो पाताल लोक में गए, यहाँ नहीं, पाताल लोक में गए और मूर्त और मुकुट को वहाँ रख दिया। जब भगवान के प्रिय सेवक गरुड़ जी को पता चला तो वो सीधे पाताल लोक में गए। गरुड़ जी को कौन रोक सकता है, तो उन्होंने जाके ये मुकुट ले लिया। और मुकुट लेके फिर वो आ रहे थे वापस यहाँ रखने के लिए कि वो उड़ते उड़ते अचानक उन्होंने देखा कि एक स्थान में उनको ऐसे लग रहा है कि मानो कोई उनको खींच रहा है। तो गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी तो किसी की ताकत नहीं है, गरुड़ जी को वो रोके या उनकी गति को भी थोड़ी धीमी कर दे। तो गरुड़ जी आश्चर्यचकित होकर नीचे देखने लगे और देखा कि यहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और गायों को चरा रहे हैं। तो गरुड़ जी उस समय कहाँ से उड़ रहे थे, वृंदावन के ऊपर से जा रहे थे। तो गरुड़ जी तुरंत नीचे आ गए, और नीचे आके फिर उन्होंने श्री कृष्ण को ये भेंट दे दिया जो मुकुट था। तो भगवान कृष्ण ने ये मुकुट लिया, और उस समय फिर आगे चल के जब वो गए, जब उनको चेलुव नारायण मूर्ति मिल गई थी, तो वो उस चेलुव नारायण मूर्ति को उन्होंने लगाया, देखा बिल्कुल बैठ जाती है। और इस प्रकार से फिर ये मूर्ति, ये मुकुट यहाँ भी आ गया। तो इसलिए ये स्थान अपने मुकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये है प्राचीन पौराणिक कथा इस स्थान के बारे में, जो श्री संप्रदाय के प्रसिद्ध आलवार हैं जिनके बारे में आप सबने अवश्य सुना है। आलवार शब्द का तमिल भाषा में अर्थ है जो उन्मत्त होते हैं। उन्मत्त किस चीज से? कृष्ण प्रेम में। जब भगवान कृष्ण के प्रेम में सदैव उन्मत्त रहते हैं वो आलवार हैं। तो आलवार 12 थे, उनमें से कईयों ने मेलकोटे धाम या तिरुनारायण का वर्णन किया है। जबकि जब रामानुजाचार्य यहाँ पर आए तो उस समय ऐसा वर्णन नहीं, उनको ऐसा मंदिर यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन रामानुजाचार्य ने जो नालायीर दिव्य प्रबंधम है, जो आलवारों की रचनाएं हैं भगवान के गुणगान में, जो तमिल भाषा के वेद माने जाते हैं उभय वेदांत, तो ऐसे ग्रंथों से रामानुजाचार्य को पता था कि ऐसे मेलुकोटे या मेलकोटे धाम में भगवान तिरुनारायण विराजमान है, ये तीर्थ स्थान है, तो यहाँ पुनः हमें स्थापित करना है इस स्थान को। क्योंकि आलवारों ने भी वर्णन किया था और पुराणों में भी इनकी कथा थी, तो रामानुजाचार्य के मन में ऐसी इच्छा तो थी पहले से ही। तो इसलिए भगवान की ऐसी योजना हुई कि उनको श्रीरंगम छोड़ना पड़ा। श्रीरंगम छोड़ के वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस तीर्थ स्थान की पुनः स्थापना की। आज जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो रामानुजाचार्य के प्रेममयी सेवा से ही उत्पन्न हुआ, बल्कि उनकी कृपा से हुआ। तो यहाँ तिरुनारायण मंदिर, बद्री नारायण मंदिर हैं, और साथ साथ में पास में जहाँ आज शाम को हम जाएंगे है कल्याणी सरोवर। ऐसे वैदिक शिल्प शास्त्र के अनुसार हर एक मंदिर के साथ एक पुष्करणी होनी चाहिए, एक सरोवर होना चाहिए जो पवित्र माना जाता है, जिसमें भक्त स्नान करें, शुद्ध हो जाएं, फिर भगवान की सेवा के लिए आ जाएं। तो यहाँ भी पुष्करणी है, वो कल्याणी सरोवर है, आज शाम को वहाँ जाएंगे। ऐसे बताया जाता है कि कल्याणी सरोवर ये वराहदेव के दिव्य पसीने के बूंदों से बने। भगवान का पसीना हमारे पसीने के समान नहीं होता। गर्भोदक सागर भी भगवान के पसीने से बना है, सारा कारण जल भी भगवान से अभिन्न है। तो ऐसे कल्याणी सागर बना, और बाद में चल के भी कई राजाओं ने फिर और इसके घाट आदि सब अच्छी तरह से बनाए। वैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे अनेक सरोवर और कुंड हैं, हालांकि यहाँ पे वर्षा इतनी नहीं होती है जैसे कि बेलगाम में होती है, फिर भी बेलगाम में प्राय कोई कुंड दिखाई पड़ते हैं। है एक छोटा सा किले के पास में, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं रहता, बहुत कम जल रहता है। तो हम देखते हैं कि जल को ठीक से रखना, कुंड और सरोवर खोद के रखना, ये न केवल राजा करते थे लेकिन ऐसे साधु लोग भी करते थे। और आज हम कल्याणी सरोवर में जाके देखेंगे कि उन्होंने ऐसी रचना की है जो आजकल वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं, मराठी में पाणलोट विकास, नहीं क्या पानी पाणलोट विकास कहते हैं ना, क्या कहते हैं। तो ऐसे उन्होंने व्यवस्था की ताकि पानी अच्छी तरह से पहाड़ों से बहते हुए आए और वहाँ पे इकट्ठा हो। तो न केवल भगवान की सेवा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उस स्थान के रहने वाले, शहर के रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जल भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है, और आपने अनुभव किया होगा, आज थोड़ा जल की कमी हो गई तो आपने लगा, आपको पता चला होगा कि जल कितना आवश्यक होता है। जल के बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। तो देखिए हमारे बुजुर्गों की बुद्धि कैसी विशाल थी, सब जगह जाकर वो सरोवर और कुंड बनाया करते थे, कुएं खोद देते थे। और क्योंकि लोग धार्मिक भी थे, वर्षा भी होती थी, कुंड आदि सब कुछ भरे हुए रहते थे, पानी की समस्या उस समय नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ कल्याणी सरोवर के अतिरिक्त और भी जगह जगह में कुंड पाए जाते हैं। और केवल यह नहीं, आप ब्रज भूमि में भी जाएंगे तो आपने देखा होगा, हालांकि ब्रज भूमि में भी बारिश बहुत कम होती है, फिर भी कितने सारे कुंड है वहां पर। आजकल थोड़े बहुत कुंड सूख गए हैं, फिर भी अनेकों में पानी है। तो ये चमत्कार है, तो इससे हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी इसी प्रकार से जल को बचा के रखना चाहिए और साथ साथ ऐसे कुंड आदि करने चाहिए। यदि राधा गोकुल आनंद की इच्छा हो, कभी प्रभुपाद जी कृपा हो, तो ऐसे कोई पुष्करणी वहाँ भी बना सकते हैं हम, बेलगाम में भगवान की इच्छा हो तो। फिर वहाँ नौका विहार उत्सव आदि भी हो सकता है, और जमीन में पानी की तो कमी नहीं है, जैसे हमारे रथ यात्रा के योजना करने वाले भक्त जानते हैं, सुकुमार प्रभु तो जानते हैं कि कुछ खुदाई नहीं हो सकती क्योंकि पानी इतने होता है रथ यात्रा के समय। तो खैर, यहाँ की पुष्करणी कल्याणी सरोवर कहलाती है। तिरुपति मंदिर में भी आपने देखा होगा पास में पुष्करणी है, वराह मंदिर भी है पास में, ऐसे और कई स्थान है यहाँ इसी इलाके में, श्री राम की लीलाओं से संबंधित है और अनेक हैं। तो आने वाले एक दो दिनों में हम इन क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ चर्चा करेंगे। तो क्योंकि आप सब थके हुए हैं, प्रवास किया है आपने, और आपको अब आज अभी थोड़ा सा प्रसाद लेके फिर विश्राम भी करना है, फिर शाम को हम मिलेंगे, जो जैसे समय का शेड्यूल वैसे बताया गया था उसके समय, अब उसके अनुसार कथा हम इस समय को कथा को विराम देते हैं, और थोड़े समय के बाद जैसे आप प्रसाद लेकर आराम करके तैयार हो जाएंगे, फिर शाम को हम कल्याणी सरोवर में मिलके और कथा जारी रखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। Thank you.